जैमिनी ऋषि ने कहा, मुनियो यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। कब पूछा? जब उन्होंने पूछा कि भाई जगन्नाथपुरी का महात्म्य बताइए, तो उसके आंसर में जैमिनी ऋषि ने कहा, यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि यह परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहां वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया। यह क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है, तथा यह सब और बालुक राशि से, मतलब बालू जो होती है उससे व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरि उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है। पूर्व काल में वराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले के भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों, क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, वे मतलब ब्रह्मा जी, कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे, ये प्रश्न उनके मन में आया। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। तो उन्होंने इनको स्तवन किया। तो मैं उनकी जो प्रार्थना है उसको मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान श्याम शंख चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णतः प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वह संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से यह सिद्ध होता है वह तुम्हें बता रहा हूँ। ब्राह्मण, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहां मेरी है। अतः तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बतलाता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है वह इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहां जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्राह्मण, समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वह पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वह स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त भी है, गुप्त है। यहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और शर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान हूँ। मेरा वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और प्रलय से आक्रांत नहीं होता। ब्राह्मण, चक्र आदि चिन्हों से युक्त जैसे मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहां जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाला अक्षयवट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहिणी नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझे पुरुषोत्तम को जो चर्म चक्षुओं से देखता है, ये उसके जल से, किसके जल से? रोहिणी कुंड के। ये उसके जल से क्षीण पाप होकर सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, ये रोहिणी कुंड भगवान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा कुंड है जिसपे क्रो का और एक और निशान है, क्रो का निशान है और एक और निशान है। तो उसकी भी एक कहानी है, उसको मैं अलग बताऊंगा। तो वहां पे उनका जल का जरूर आप लोग थोड़ा सा लेना चाहिए और उसको लेके भगवान के दर्शन करने चाहिए उसके, क्योंकि इसमें लिखा ये उसके जल मुझ उस उसके किनारे निवास करते हुए, अच्छा उसके किनारे निवास करते हुए जो मुझे आंख से देखता है उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। मतलब जल लेना जरूरी है उसका, किसका? रोहिणी कुंड का। महाभाग, वहां जाओ, उस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम श्रेष्ठ क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाश आ जाएगी। वह क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से यह किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब यह प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वह सब वहां एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है। और एक निश्वास, मतलब एक सांस भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है वहां पे, ये उसके महिमा है। ब्राह्मणों इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। जब ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए तो मुनियों ने पूछा उनसे कि भाई ऋषियों ने कि जैमिनी ऋषि से कि क्या हुआ वहां पे, दर्शन करके क्या किया ब्रह्मा जी ने। तो जैमिनी ऋषि जवाब दे रहे हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्मा देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीनमुख से नीलाचल पर्वत पर आ गए। वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया, उन्हें साक्षात प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि वो ब्रह्मा जी इसलिए कर रहे थे क्योंकि तीन तापों से लोग पीड़ित हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए तो भगवान के पास आए थे। उधर उन्होंने सोचा यमराज जी ने कि भैया ये तो मेरी मुक्ति, मेरा तो डिपार्टमेंट ही काट देंगे पूरा, तो ब्रह्मा जी भी अपना डिपार्टमेंट बचाने के लिए आए यहाँ पे। तो यमराज जी बोले, अपने फिर स्तुति करी भगवान की, तो मैं आखिरी कुछ लाइनों से शुरुआत कर रहा हूँ वहां पे उनकी स्तुति में, कि आपका मनोहर विशाल वक्ष शिवत्स चिन्ह तथा कौस्तु मणि से उद्भासित है, आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणार विंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति है, वे समस्त लक्षणों से लक्षित होती है और तथा आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं। भगवान आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज की इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान श्री लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्यनंदन तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना संभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते, यहाँ बसने वाले मनुष्य और पशु पक्षियों का पाप अभी जलकर भस्म हो जाते हैं, इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया करके वहाँ किसी भी मनुष्य पशु पक्षियों का अनादर ना करें, उनकी बुराई ना करें, उनमें दोष दृष्टि नहीं करें, वो ऐसे पैसे मांगते हैं वो वैसे पैसे मांगते हैं बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि लक्ष्मी जी और भगवान के अकॉर्डिंग उन सबके पाप जल चुके हैं, उन यमराज का वहाँ बस नहीं चलता, उन लोगों पर कोई कर्मफल उनके ऊपर है नहीं, इसलिए आप थोड़ा वहां सावधानी बरतते हैं। इस मामले में आगे बढ़ता हूँ। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अतः इसको छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी पितामह हैं वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्मा जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं, इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। यहाँ जीवन मुक्त एवं विमुक्षु पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, सुरेश्वरी आपने जो कहा है कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, ठीक है, ईश्वर की इच्छा निरंकुश होती है, जो विष्णु अन्यत्र किसी को बंधन देते हैं वे यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। मातः मेरे तथा स्वर्ग नरक में भी वे ही सृष्टा हैं, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा हैं, अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों का मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सब बात मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री लक्ष्मी देवी जी कह रही हैं आगे, फिर रविनंदन जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब जा चुका था, उस समय सात कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंड मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ गए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना। क्या सुना? मार्कंड शोक ना करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन जिसकी सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी को सुनकर मार्कंड मुनि ने बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महा भयानक एकार्णव के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है। इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खंभे के समान खड़ा है। इस प्रलयकालीन एकार्णव में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है तब भूतल का यह प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंड्य आओ, यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुन पड़ता है? यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंड्य जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए भगवान विष्णु तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी को भी देखा तथा उनका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो उन्होंने स्तुति करी भगवान की अच्छी खासी। मैं स्तुति के आगे जाता हूँ, आपको स्तुति सुननी हो तो मुझे बता सकते हैं अलग से। उन्होंने कहा कि गोविंद अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि मेरी ओर देखकर इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ये सुनकर, इस स्तुति को सुनकर ब्रह्म करते हुए महर्षि मार्कंड की को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवर, मेरे तत्व को न जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घजीवी हुए हो। महामने, इस कल्पवट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को देखो, वह सबका काल स्वरूप है, काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुखपूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंड जी का मुख आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बालक रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे, ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, सुमद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत, वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा, सातों पाताल और सहस्त्रों नागकन्याएं देखी, हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग का दर्शन किया, तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की है वह सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं भी उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का दर्शन किया। मेरे साथ मतलब यहाँ लक्ष्मी जी खुद के लिए कह रही, मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, अब श्री भगवान बोल रहे, मुने, यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है, ऐसा समझो। यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है, न संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष आनंद स्वरूप हो पुनः गर्भ में नहीं आता। यहाँ वापस से बोल रहा हूँ, सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर, यह जानकर कि भगवान यहाँ विद्यमान है, इस क्षेत्र में जो प्रवेश करने वाला पुरुष है वो परमानंद स्वरूप है, पुनः गर्भ में नहीं आता। इसलिए आप जब एंट्री कर रहे हो जगन्नाथपुरी में, तो पक्का विश्वास रखना है भगवान विश्वास बैठे हैं दर्शन देने के लिए, उनको ही हम दर्शन करने जा रहे हैं, सदा यहीं रहते हैं और मोक्षदायक हैं। ऐसा एंट्री करते वक्त जो मानता है वो लिखे हैं उसमें भगवान की, वो पुनः घर में नहीं आता। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा। महामुनि मार्कंडेय जी ने कहा, प्रभो, मैं यहाँ निवास करूंगा, पुरुषोत्तम मुझ पर कृपा कीजिए। तो श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षे, इस मोक्षदायक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर मेरी तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। शिव जी की आराधना करने को बोला भगवान ने। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंड महामुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंड जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है। तो वहां एक मार्कंड कुंड है, उसका मैं आपको डालूंगा पूरा। तो उस मार्कंड कुंड में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, ये पुरी में ही है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है। तो मतलब बता रखा है जो समुद्र के अंदर है उसमें 5 कोस तक ये जगन्नाथ जी का क्षेत्र है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल और सुनहरी बालुकाओं से व्याप्त तो और नीलगिरी से सुशोभित है। ये जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं साक्षात नारायण स्वरूप ही है। वहां पर शिव जी का मंदिर, उनके बारे में बता रहे हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने कारण उनका नाम यमेश्वर है। तो वहां जो आप शिवजी का दर्शन करेंगे उनका नाम है यमेश्वर। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि मतलब करोड़ों शिवलिंग के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। अब आप देख लीजिए आपको ये फल चाहिए कि नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। जैमिनी ऋषि बोलते हैं, कहते हैं, सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक वार्षिकालिक 4 महीनों में भगवान विष्णु का शयन होता है। यह श्री हरि की आराधना का परम पवित्र समय है। वर्ष की 4 महीनों में जितने दिन मनुष्य जनार्दन के समीप रहकर व्यतीत करता है, वर्षा के 4 महीनों में जितने दिन मनुष्य जनार्दन के समीप रहकर व्यतीत करता है, उतने समय तक वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके भी पुष्य पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चातुर्मास का व्रत पालन करना मुक्ति का साधन माना गया है। इसलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुष्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। चातुर्मास में भगवान शेष शैया पर निवास करते हैं। 8 महीने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसी का चातुर्मास में 1 दिन निवास और दर्शन प्राप्त कर लेता है, दर्शन से प्राप्त कर लेता है। जो सब प्रकार के पापों में आसक्त संपूर्ण सदाचारों तो भ्रष्ट में से भ्रष्ट तथा समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो वह भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चातुर्मास का व्यतीत करता है वह यहाँ प्रचुर शोक भोग के अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। देवादिदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य यहाँ भीष्म पंचक नामक उत्तम व्रत का पालन करे और जंगली फल मूल खाकर रहे। यह व्रत भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, सब पापों को नाश करने वाला और वैकुंठ धाम रूपी सद्गति देने वाला है। मुनीश्वरों, यह सब तुम्हें रहस्य की बात बताई गई है। ये जितनी भी व्रत हैं वे भगवान भगवत भक्ति विहीन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं, यह अच्छी तरह जान लो। तीर्थों का तथा तो सात्विक दान और तपस्याओं का जो फल जो उत्तम फल है वह सब केवल विष्णु भक्ति से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल की बात है, त्रेता युग में इस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। तो इसको बेचना नहीं चाहिए, इसको मोल भी लेना चाहिए। मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा, इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त एवं शुद्ध चित्त होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाता है। तो बिल्कुल यही सोचना कि सोचना है, इसमें लिखा है सही जैसे मैंने बोला है कि मैं जब भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा, इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त एवं शुद्ध चित्त होकर विशुद्ध वैकुंठ भाव धाम को जाता है, ऐसा लिखा है इसमें स्कंद पुराण में। भगवान का प्रसाद यदि चिरकाल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश में ले गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने पर वह सब पापों का नाश करने वाला है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न तथा और गंगा जल दोनों बराबर हैं, उनको भोजन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह काष्ठ रूपी परब्रह्म सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित हैं। थोड़े पुण्य वाले मनुष्यों का उस प्रसाद में विश्वास नहीं होता, उसकी महिमा कोई नहीं जानता। भयंकर कलिकाल में धर्म के 3 चरणों का नाश हो जाता है, उसका एक ही पाद रह जाता है। उस समय प्राय सभी लोग अवसरवादी, दंभी और षट प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म से विमुख और जीवा और उपस्थ के भोगों में तत्पर रहते हैं, ध्यान तपस्या व्रत कभी नहीं करते। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं, अपना कोई प्रयोजन न रखने में भी दूसरे की निंदा से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न अथवा कौतूहलवश भी दूसरों के कार्य की हानि करते हैं और अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों का महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उपस्थित करते हैं। धर्मतः प्राप्त होकर अपने घर में आई हुई सुंदर स्त्री की भी अवहेलना करते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरी कोई व्रत भी कहीं पालित नहीं होता, यदि कहीं है तो वह ब्राह्मणों की जीविका के रूप में है, जो परलौकिक कर्म है और वह भी यथार्थ भाव से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होता। कलयुग में राजा लोग प्राय प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं, वे सदा कर वसूलते हैं, वे सदा कर वसूलते हैं, प्राय पापिष्ठ चोरों की वृत्ति वाले होते हैं। कलयुग में प्राय सब लोग वर्ण संकर शूद्र के तुल्य होते हैं। प्राचीन काल की बात है, त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हो गए हैं। उन्होंने व्रत में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़ी भक्ति की। राजा इंद्रदुम के द्वारा निश्चित किए हुए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ बलि भांति संस्कार किए हुए छह रस विचित्र माल्य सुगंध अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के राजोचित उपचार अवसर अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरि का दर्शन किया। देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नतापूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए उत्तम उपचारों तथा शस्त्रों उपहार की सामग्रियों को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा। तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह ब्राह्म्य पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा, दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अग्रपान अन्नपान आदि भोजन सामग्री परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने कृतार्थ माना और तथा आँखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान के निवेदित किए हुए प्रसाद को ही खाने वाले व्रतशील राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। उससे तपस्या का उद्देश्य यह था कि मेरे राज्य में किसी की अकाल मृत्यु न हो और मेरे मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष स्वरूप मंत्रराज अनुष्टुप का उन्होंने नित्य नियमपूर्वक जप किया। इस प्रकार 100 वर्ष तक जप और तपस्या के पश्चात राजा ने समस्त पापों का अपहरण करने वाले साक्षात भगवान श्री नरसिंह का दर्शन प्राप्त किया। 100 वर्षों के बाद वे योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। ऐसे भगवान को उपस्थित देखकर आश्चर्यचकित होकर राजा श्वेत हर्ष गदगद वाणी में हे नाथ प्रसन्न हुई ऐसा कहकर हुए धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भगवत भक्त वत्सल श्री भगवान नरसिंह ने कहा, वत्स उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभिष्ट वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर बोले, स्वामिन, यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं तथा जब तक इस पृथ्वी पर मैं राजा के पद पर रहूं तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु का न प्राप्त हो और जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, श्वेत, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। 1000 वर्षों तक तुमने अपनी समृद्धशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य को, मतलब जो भोग लगता है उसको, भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य होता है, वहाँ पे भगवान का जो भोजन बनता है उसे, मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो जो भी वहाँ पे भगवान का भोजन करेंगे जगन्नाथपुरी में, उसका भगवान कह रहे हैं, विष्णु नरसिंह भगवान ने बोला है राजा श्वेत से कि जो भी भगवान की निर्माल्य का भोजन करेंगे उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो अब वहाँ भोजन जो भी जगन्नाथपुरी में करना है वो सिर्फ भगवान का ही भोजन करना है, दहार का कुछ नहीं खाना। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट एवं सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सब पापों का क्षय करने वाला है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध हैं वैसे उनका प्रसाद भी नित्य शुद्ध है। व्रत परायण विधवा स्त्रियां, वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले पुरुष, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को लेकर पवित्र होते हैं। दरिद्र कृपण गृहस्थ प्रभु स्वदेशी परदेशी जो भी यहाँ आता है उन्हें चाहिए कि कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार ना दिखाएं, बिल्कुल भी अहंकार नहीं दिखाएं वहाँ अपने वहाँ ग्रहण करने में कि ये तो मीठा नहीं है, इसमें शक्कर कम है और ये सादा है और इसको कब तक खाएंगे चावल को, ऐसे नहीं बोलना। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से तथा शुद्ध शांति के निमित्त आकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। तो गले तक खाना एकदम भर भर के। जो पंडितामानी मूर्ख अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृतमय प्रसाद की निंदा करते हैं उनकी निश्चय ही दुर्गति होती है। बिल्कुल बुराई नहीं करनी वहां प्रसाद की, बिल्कुल भी। राजा ही प्रजा का धन का अपहरण और शूद्र राज सेवक होते हैं। वैदिक और स्मार्त आदि कर्मों का कली में भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता, उस समय दान धर्म सबसे उत्तम है। कलियुग प्राप्त होने पर यहाँ भगवान विष्णु ही सबकी गति हैं। शालग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण कीर्तन किया जाता है, परंतु यह पुण्य क्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्रश परमात्मा का शरीर है। वाह, यहाँ ही बात है। शालग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु यह पुण्य क्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्रश परमात्मा का शरीर है। शरीर है मतलब ये पूरा जगन्नाथ क्षेत्र। काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान है। पापियों का कली काल जनित पाप का नाश करने के लिए ही यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन स्तवन और प्रसाद भोजन से मोक्षदायक होते हैं। भगवान के प्रसाद से जिनका जिसका शरीर व्याप्त है वह उस विशुद्ध आहार से विशुद्ध आत्मा होने के कारण पातकों से लिप्त नहीं होता। भगवान जगदीश इस तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। तो अगर आपके पास कुछ देना चाहते हो ना भगवान को, फ्रूट फल फ्रूट नारियल कुछ भी देना चाहते हो, तो भगवान को दूर से ही दिखा सकते हो आप, उसी से भगवान को भोग लग जाएगा। खाते हैं वहाँ पे भगवान खूब। ऐसा ही लिखा है यहाँ पे कि भगवान जगदीश इस तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान विष्णु के श्रीअंगों से उतारी हुई तुलसी की माला जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है, अथवा जो उसे हृदय से लगाए रखता है, या भगवत प्रसाद रूप तुलसी दल का भक्षण करता है, भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तो वहाँ अगर तुलसी जी मिल जाए, अगर वहाँ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी किसी से, तो वो ले लेनी चाहिए, और उसे पूरे साल भर या जितने महीने भी खाना चाहिए। तुलसी दस से मिश्रित भगवान का भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चय मोक्ष पाता है। भगवान विष्णु के चरणोदक से स्नान जल तथा सब पापों का नाश करने वाला है। क्षय आदि अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श जनित दोष भी उनके द्वारा नाश होता है। वाह, नहीं, शव आदि अपवित्र वस्तुओं का के स्पर्श जनित दोष का भी उनके द्वारा नाश हो जाता है। किसके द्वारा? आचमन, चरणोदक और स्नान जल के द्वारा। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और व्रतों का फल देने वाले तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हैं। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का निवारण है, रोग समूह का संहार है, पाप राशि का नाश करने वाला है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले वाले भगवान विष्णु सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष देते हैं। नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रदुम्न ने प्रसन्नचित होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करते शेष रात्रि व्यतीत की। तदनंतर निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्हें जगन्नाथ जी का पूजन किया। फिर वे महानदी के पार उतरे। इसके बाद ऑर्डर देश के राजा के बताए हुए मार्ग से राजा इंद्रदुम्न अपनी सेना के साथ एकाम्र वन, जिसे भुवनेश्वर भी कहते हैं, नाम के क्षेत्र की ओर चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर मार्ग में उन्हें गंधवाहन नाम की नदी मिली जो बड़े वेग से बह रही थी। उसको पार करके बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने, यह शब्द कहाँ हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, यह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्र पुरोहित ने किसी प्रकार भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और यह भगवान गौरीपति का एकाम्रवन नाम का क्षेत्र है, जब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोगों का अधिकरण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया। इस एक समय भगवान शिव ने लोगों के आदि कारण अनादि पुरुषोत्तम भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। तो उसमें स्तवन आता है भगवान का, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। इसके बाद जब उन्होंने किया तो भगवान को नमस्कार किया, उसके बाद उसमें लिखा है, त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित हार कुंडल केयूर मुकुंड आदि से सुशोभित कृपा निदान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिव जी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीचा नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन 10 योजन का विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, 10 योजन का क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक जो फैला हुआ है, उसके उत्तर में एकाम्रवन नाम का सुंदर वन है। तो ये भुवनेश्वर पहले एक वन था जिसका नाम है एकाम्रवन, वहां पार्वती जी के साथ निवास करें। तो यहाँ भगवान शंकर को बोला विष्णु जी ने, क्या पर्वन एकाम्रवन नाम का जो जगह है जो कि भुवनेश्वर है, वहाँ पार्वती जी के साथ निवास करें। वहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपके कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान के कहने पर शिव जी को अभिषिक्त करते हैं कोटि लिंगों के साथ, और ये आदेश दिया ये आदेश दिया विष्णु भगवान ने। तो बाकी जगह तो शिव जी आ सकते हैं अपनी इच्छा से रहते हैं, पर यहाँ भगवान के कहने से यहाँ रहते हैं, तो यहाँ आप भगवान निश्चित रूप से शिव जी यहाँ विराजते हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, देव देव जगन्नाथ शरणागत दुख भजन प्रभो जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसको शिरोद्धार करके मैं उस मोक्षदायक कल्याणमय तीर्थ में जाऊंगा। यूं कहकर भगवान शंकर क्षेत्र में पधारे, मतलब जहाँ भुवनेश्वर में जो है वहाँ पे भगवान पधार गए। साक्षात ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शंकर की स्थापना की है, यहाँ ऐसा लिखा है पद्म पुराण में जो मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा ही बोल रहा हूँ। राजन अब हम सब लोग वहाँ चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शंकर शिव जी का दर्शन करेंगे। यह जो शिव जी का क्षेत्र है, अब ध्यान से सुनिएगा, यह जो शिव जी का क्षेत्र है इसे तमोगुण नाशक का बताया गया है। तो अगर आप अपने तमोगुण नाश करना चाहते हैं, दूसरों की बुराई करना और जली भुनी चीजें खाना या इस तरह की जो कुछ गुण रहते हैं, तो ये तमोगुण का जो नाश यहाँ इस जगह में हो जाता है। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। जो रजोगुण को धो डालने वाला क्षेत्र, रजोगुण को भी धो डालता है, यह बिरज मंडल, तो इसको बोले बिरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। बिरज मंडल से आया भुवनेश्वर। सत्य गुण की अधिकता होने के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बता गया है। सत्य गुण की प्रधानता है यहाँ पे, सत्व गुण की। महाराज जिनका चित्त पाप कर्मों में मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र पर नहीं जमता। किसका शेष विश्वास नहीं जमता? जिनका चित्त पाप कर्मों से मलिन हो गया है। तो ऐसा कैसा, इस स्कंद पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आगे और बता रहा हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, ब्रह्मन आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान हैं, वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान हैं वहाँ पर हम अवश्य चलेंगे। इस निश्चय के अनुसार देवर्षि नारद और राजा इंद्रदुम्न ने दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां बिंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। कहाँ? बिंदु तीर्थ में स्नान करने करके उसके तट पर भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटेश्वर महालय को गए। वहां के जल से भली भांति आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर, जो कि भुवनेश्वर त्रिभुनेश त्रिभुवनेश्वर भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब परमेश्वर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रदुम्न थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करें। क्या बोले? इंद्रदुम्न थोड़े ही समय तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तत्पश्चात नारद जी से कहा, किसने? शिव जी ने कहा, महाभाग ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा दी है, मतलब ब्रह्मा जी ने उनको जो आज्ञा दी है नारद जी को, उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए आप पूर्ण करें। किसको बोला? नारद जी को। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? साक्षात विष्णु का। तो आप ये मत सोचना यहाँ विष्णु नहीं है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है मतलब वहाँ भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, विष्णु भगवान का ही स्वरूप है वो। उसमें भी परम पुण्य में अंतरवेदी में भगवान विष्णु के इंद्रय के समान मानी गई है, भगवान के हृदय के समान मानी गई है। उसमें भी परम पुण्यमय अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है। ओह, जिसकी रक्षा के लिए श्री भगवान विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। तो अंतर्वेदी की स्थापना के लिए शिव जी को 8 स्वरूपों में भगवान विष्णु ने स्थापित कर रखा है। इतनी महत्वपूर्ण है अंतर्वेदी, जिसपे जगन्नाथ जी विराजते हैं। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्र भाग में दुर्गा देवी के साथ, कहाँ? शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जो आकार कैसा पुरुषोत्तम क्षेत्र का, शंखाकार, उसके अग्र भाग में, उसके आगे वाले भाग में दुर्गा देवी के साथ शिव जी कह रहे हैं कि मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ। कहाँ पे? जो आगे वाला हिस्सा है उसमें दुर्गा देवी के साथ, वहीं इस राजा को ले चलो, वहां ले जाने को बोलते हैं। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्री अनि हरि फिर अंतर्धान हो गए। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले, वहां मेरी आज्ञा से भगवान नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। कहाँ पे? जहाँ पे वो जो फ्रंट है उस शंख का, वहां बता रहे हैं कि वहां दुर्गा देवी के साथ मैं स्थान में निवास करता हूँ, और वहीं पे आप भगवान नरसिंह का क्षेत्र बनाओ। तो ये नरसिंह भगवान मंदिर आप जानते ही हैं। उस क्षेत्र में हमारे समीप नृपश्रेष्ठ इंद्रदुम्न 1,000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो आपको याद है ना यज्ञ कहाँ हुआ है? तो इंद्रदुम्न महाराज 1,000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे वहां पे। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष दिखलाओ। एक कोई वृक्ष भी बताते हैं ब्रह्म स्वरूप, उसके द्वारा विश्वकर्मा 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे, और उन प्रतिमाओं की स्थापना के समय ब्रह्मा जी स्वयं पधारेंगे। तदनंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठमय शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन एवं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद को बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी भी जगत गुरु महादेव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, आपने जो आदेश दिया है वैसा ही करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मुझे आज्ञा दी है। नाथ, आप और ब्रह्मा जी परमात्मा श्री हरि से भिन्न नहीं है। इन राजा इंद्रदुम्न की भाग्य स्मृति महान है, इसी से इन्हें आप तीनों देवताओं का वह विशाल अनुग्रह प्राप्त हुआ जिसको मन के द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता था। जिनके प्रसंग पापी मनुष्य भी अब भवसागर तर जाते हैं, वे भूत भावन भगवान विष्णु अचिंत्य महिमा वाले हैं। ये भगवान कितनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, यह बात बुद्धि में नहीं आ सकती। वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों द्वारा चिरकाल तक विद्वान पुरुष यत्न करके रह जाते हैं, किंतु सफलता नहीं पाते, और एक नीच मनुष्य अनायास होने वाले कर्म से मोक्ष पा जाता है। वंचर ग्वालों के घर में रहकर दही दूध और जंगली फल मूलों से जीविका चलाने वाले गोपियां भगवान के स्नेह सुख का उपभोग करके ही मुक्ति पा गई। निरंतर भगवान से द्रोह रखने वाला शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ की सभा में भगवान के कटुवचन सुनाकर भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान का चरित्र ऐसा है वैसा है, इस प्रकार निश्चय का विषय नहीं है। बहुत समय तक भगवान महान प्रयत्न करते रहने पर भी भगवान श्री विष्णु के दिव्य चरित्र के विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। इस संसार में पुरुषोत्तम क्षेत्र का निवास भगवान की सायुज की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान विष्णु इंद्रदुम्न के प्रसंग से वहां सब लोगों की प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। क्या बोला? प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तदनंतर महादेव जी तथास्तु कहकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। जैमिनी ऋषि कहते हैं, इसके बाद अपने कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंश से उत्पन्न हुए, किसके? अश्वमेध यज्ञ के अंश से उत्पन्न हुए इंद्रदुम्न सरोवर के समीप जाए। उसी के तट पर नरसिंह के स्वरूप का धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करें, और प्रार्थना इस प्रकार है, हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके कैसी प्रार्थना करनी है बता रहा हूँ, बता रहे हैं यहाँ पे स्कंद पुराण में। हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृप श्रेष्ठ इंद्रदुम्न ने 1,000 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। प्रभो, उस यज्ञ के अंश अंश से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो पहले वहां स्नान करने से पहले भगवान नरसिंह भगवान से आज्ञा लेनी है। फिर इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात सरोवर के किनारे जाकर हाथ धोकर आचमन करके अंजलि बांधे प्रार्थना करनी है। हे तीर्थ प्रवर, अश्वमेघ यज्ञ के अंशभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गौओं के खुर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गौओं का मूत्र फेन दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थमय पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। आप स्नान से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। आप स्नान द्वारा मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। तत्पश्चात स्नान करें, जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार, अब कुछ मंत्र लिखा है इसमें, नाम नहीं बताया इसका, अगमर्वण अक्षर अगमर्षण मंत्र का जप करें। उसके बाद आप हर भगवान का नाम ले सकते हैं। उसके बाद पुनः तीर्थ को प्रार्थना करें। अंजलि में 3 बार डुबकी लगाने के बाद, मंत्र का जाप करने के बाद, फिर वापस भगवान उनसे प्रार्थना करें। तीर्थराज से अश्वमेघ यज्ञ के अंग से प्रकट हुए सर्व पाप नाशक तीर्थ, तुम में स्नान करने से अब मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहना है। 3 बार फिर वापस जल में गोते लगाने हैं। फिर वापस नरसिंहाकार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। देवताओं, ऋषियों और पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करना है। फिर पश्चिमाभिमुख होकर विराजमान भगवान नरसिंह के समीप वापस जाएं। जाते वक्त भगवान नरसिंह के पास जाएं और वहां पे फिर उनका पूजा का लिखा है, अथर्ववेदोक्त मंत्र, राज अथर्ववेद के मंत्र से भगवान की पूजा के लिए बता रखा है। खैर वो सब ठीक है, बट आप वहां पे जाके वापस भगवान नरसिंह की फूलों से, सुगंधित फूलों से, घी से, थोड़ा इसमें आइटम बता रखे हैं, उनका नाम ले देता हूँ। मिश्री और गाय के घी में मिलाकर गो गो गाय के दूध में तैयार की हुई खीर पीने में पी में घी में बनाकर पकाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक मतलब लड्डू, हलवा संजाव मतलब हलवा, घी में बने हुए पुए, नाना प्रकार के फल, शक्कर, दही, मिले हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। ये थोड़ा सा और पूजा का विधान है, वो मैं नहीं बता रहा। उसके बाद इसमें लिखा है कि जय राम भद्रे, जय सुभद्रे, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ, इस प्रकार जय प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। क्या नाम लेना है? पहला नाम जय राम भद्रे, दूसरा नाम जय सुभद्रे, सुभद्रे सुभद्रा जो है, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ, इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक जो उच्चारण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है।
जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न पुरोहित जी के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में नीलकंठ के महादेव जी के समीप गए। नीलकंठ मंदिर इंद्रद्युम्न सरोवर के पास है। वह महादेव जी की पूजा करके राजा ने श्री दुर्गा जी को प्रणाम किया। फिर सभी लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल हो गए। तो जब अंदर आते हैं तो वो एक मंदिर आता है माता जी का। माता जी के बाद सीधे वो यहाँ पे आए इस जगह पे जहाँ पे नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, इन्हीं के पास इंद्रदुम सब लोग फिर बाद में वो यज्ञ करेंगे, तो अब आगे मैं बता रहा हूँ। फिर सब लोग अपना उत्तम रथ छोड़कर अनुगामियों सहित पैदल गए और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए नीलगिरी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। वह पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों लताओं से व्याप्त था। भांति भांति के पक्षी वहां कलरव करते थे। बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण उस पर्वत का किनारा ऊंचा नीचा और दुर्गम दिखाई देता था। वह नीलगिरी चारों ओर से गोलाकार था। वे सब लोग उस मार्ग से गए जहाँ काले अगरु वृक्ष के नीचे, कौन सा काले अगरु वृक्ष के नीचे सब विपत्तियों में भयों को हरने वाले दिव्य सिंह रूपधारी भगवान नरसिंह निवास करते हैं, जिनका दर्शन करने से मनुष्य की कोटि कोटि ब्रह्म हत्याएं विलीन हो जाती हैं। उनका मुख फैला हुआ है दांत बड़े भयंकर दिखाई देते हैं, कुछ पीले रंग के गर्दन के बालों से उनका मुखमंडल व्याप्त है। वे तीन नेत्रों से युक्त एवं भयानक हैं। अपनी टांगों पर उत्तान सोए हुए दैत्य के वक्षस्थल को वज्र तुल्य कठोर नखों से विदीर्ण कर रहे हैं। मुख पर अट्टहास की छटा है, जिसमें लपलपाती हुई लाल रंग की जीवा शोभा पाती है। उनके हाथों में शंख और चक्र सुशोभित हैं। मस्तक पर किरीट मुकुट से उद्भासित हो रहा है। नेत्रों से आग की चिंगारियां निकलती है, जिनसे समस्त दिशाएं संतप्त हो रही हैं। प्रचंड आघात के कारण भगवान चरण कमल धरती में फंस गए हैं। उन आदि मूर्ति भगवान नरसिंह का दर्शन करके सबने प्रणाम करके नारद जी के वचनों पर विश्वास किया और कहा, ये मैं कृतार्थ हो गया। आप तो ज्ञान की निधि हैं, मैं तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब पातकों से छूट गया। दया सिंधु भगवान नीलमणि मई मूर्ति किस स्थान पर विराजमान है, जो दर्शन से ही मुक्ति देने वाली है। विप्रवर, उसी का मुझे दर्शन कराइए। तब नारद जी ने राजा इंद्रदुम्न को उस परम पावन स्थान का दर्शन कराया, जहां भगवान विष्णु स्वर्णमय बालुका से आच्छादित हो गए थे। मुनि ने वहां ले जाकर राजा का कहा, महाराज, इस दो जन और एक योजन में फैले हुए वटवृक्ष को देखो। इतना बड़ा था वो वटवृक्ष, मतलब दो योजन ऊंचा और एक योजन तक फैला हुआ। यह प्रलय काल में भी स्थिर रहता है और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी छाया में जाने से ही मानव पाप से मुक्त हो जाता है। इसकी जड़ में प्राण त्यागने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। फिर जो इसकी पूजा और स्तुति करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इसके मूल भाग से पश्चिम और नरसिंह जी से उत्तर भगवान नील माधव विराजमान थे। वे ही तुम पर अनुग्रह करने के लिए अब चार स्वरूपों में यहाँ प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप के भीतर भगवान का अपना धाम है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र ही भगवान का अपना धाम है। राजन, जो मोक्ष के अधिकारी हैं, वही इसकी महिमा को समझ पाता है। अन्य मनुष्यों के विशिष्ट पाप कर्मियों के लिए यह विश्वास की भूमि नहीं है। भगवान जगन्नाथ का अंतर्धान होना या छिप जाना किसी विशेष कारण से होता है, परंतु वे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते रहते हैं। राजन, भगवान मत्स्य, कच्छप आदि अनेक अवतारों के द्वारा जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं, तब कारण की निवृत्ति हो जाने से वे अंतर्धान हो जाते हैं। परंतु वे ही दया सागर भगवान इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में बिना किसी कारण के नित्य निवास करते हैं। जैसे श्वेत द्वीप से जाकर भगवान विष्णु अभ्यस अन्यत्र अवतार लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ रहते हुए वे द्वारिका, कांची, पुष्कर आदि में प्रभाव पूर्वक प्रकट होते हैं। राजन, अनेक अनेक तीर्थ, देश, क्षेत्र और मंदिरों में भगवान विराज रहे हैं। महात्मा नारद के दिखाए हुए स्थान को महाराज इंद्रदुम्न ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान को वहां प्रत्यक्ष मानकर इस प्रकार स्तवन किया। देवाधिदेव जगन्नाथ, शरणागत को पीड़ा दूर करने वाले कमल नयन नारायण, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, एकमात्र आप ही दुख राशि का विध्वंस करने वाले हैं। शुद्र मनुष्य लेश मात्र सुख की लिप्सा से शुद्र देवताओं की सेवा करते हैं। भगवान, आप भक्ति भाव से आराधना करके मनुष्यों को साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अजामिल ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का परित्याग करके कौन सा पाप नहीं किया था, किंतु नाथ, वह भी आपका नाम का उच्चारण करने मात्र से मुक्त होया। आपके स्मरण मात्र से ही पाश हाथ में लेकर आए हुए यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। देवेश्वर, समस्त शास्त्रीय उपाय आपके दर्शन के लिए ही बताए गए हैं। आपका साक्षात्कार हो जाने पर हृदय में के सभी संचय नष्ट हो जाते हैं। उसी क्षण मनुष्य संदेह रहित हो जाता है। प्रभु, आप ही सर्व को आश्रय देने वाले हैं, मुझे दीन पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे केवल इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपकी जो मूर्ति यहाँ विराजमान है, उसका मैं इस नेत्र से दर्शन करूँ। इसके सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार हाथ जोड़े हुए इंद्रदुम्न महाराज मधुसूदन की स्तुति करके पृथ्वी पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस समय उनकी आंख नेत्रों में आंसू भराए थे। इसी समय आकाशवाणी हुई। फिर इंद्रदुम्न ने भी सुना, राजन, चिंता ना करो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी का जो वचन तुमसे कहा है उसके अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा ने नारद से कहा, ने आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो कुछ कहा था इस आकाशवाणी ने भी उसी का अनुमोदन किया है। ब्रह्मा जी साक्षात जगन्नाथ हैं, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपका वचन भगवान का ही वचन है, अतः मुझे इसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन चलिए हम लोग भगवान नीलकंठ के समीप चलें। वहीं सब राक्षसों का संहार तथा समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिंह की पश्चिमाभिमुख स्थापना करूंगा, तो पश्चिम की तरफ मैं करते हुए। इससे अंतर्धान को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही यहाँ एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्व मात्रा का पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुषी दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है उसी के पश्चिम का स्थान क्षेत्र होगा। वहीं तुम 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं ठहरूंगा और इन ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्चा विग्रह में इनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण इंद्रिय और मन के साथ विराजेंगे। नारद जी ये बात सुनकर राजा इंद्र चंदन वृक्ष के समीप गए। उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुपटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, देव मैं शिल्प शास्त्र का ज्ञाता हूँ, इस समय आपके परम सुंदर नरसिंह भगवान का निर्माण करूंगा। राजा बोले, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, विश्वकर्मा के पुत्र हो, यह नारद जी ने मुझे बता दिया है। अतः आकर प्राकार और तोरण के साथ नरसिंह जी का सुंदर मंदिर तुम शीघ्र तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। यों कहकर देव शिल्पी को विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और शिला संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत दिन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिनों में बनने वाला था तथापि देव शिल्पी की महिमा से 4th दिन ही बनकर तैयार हो गया। तदनंतर 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्र करके जब राजा नारद जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तभी शंख मृदंग ढोल गीत मंगल गान आदि हाथियों के घंटे के शब्द सहस्त्र सुनाई में सुन पड़े। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा। इतने में नारद जी विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नरसिंह मूर्ति को लेकर वहां आए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसमें दिव्य माला वस्त्र धारण किए हुए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनुलेप किया गया था। वह सब ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको दर्प प्रदान करती थी, सबको हर्ष प्रदान करती थी। हरे कृष्ण, सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। सबने देवर्षि नारद की प्रशंसा करी। फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह जी की आकृति पहचानी और ये निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्न चित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा के अनुरोध पर नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह की प्रतिमा को स्थापित रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित कराया। उसके बाद वैष्णव ब्राह्मण अन्यान्य नरेशगण तथा बुद्धिमान नारद जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मशास्त्रीय स्त्रोतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्तवन किया। वो जिस टर्म है मैं आपको दूसरी उसमें बताता हूँ।